2 साल बीत चुके थे उस हादसे को। अहाना ने अपनी जिम्मेदारियां फिर से संभालनी थीं। अक्षय की चेतावनी का असर था कि रूपाली जी अहाना को उसके सामने कुछ नहीं कहती थीं। उसके जाने के बाद अगर कुछ कहती भी थीं तो अहाना उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। अहाना की इस प्रतिक्रियाहीनता को देखकर रूपाली जी मन ही मन कुढ़ती रह जाती थीं। अहाना के मन में उनके प्रति एक उदासीनता सी छा गई थी। अब उनकी कोई बात उसे प्रभावित नहीं करती थी। वो बस अपना काम करती, अपने फर्ज निभाती और पूरा ध्यान अक्षय और अपने रिश्ते, अपने करियर पर लगाती। रूपाली जी ने कई बार ऐसी स्थितियां बनाई जहां अक्षय और अहाना के रिश्ते में दरार आने की आशंका बनी, पर उन्होंने बहुत समझदारी से अपने रिश्ते को संभाला। इन बीते 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। उस हादसे के बाद एक खालीपन सबकी जिंदगी में आ गया था। वक्त गुजर गया था पर दुख खत्म नहीं हुआ था। फिर भी सभी उस दुख से उभर गए थे, लेकिन एक उदासी सी उनकी जिंदगी में जगह बना चुकी थी। इन सब में सबसे मुश्किल घड़ी अक्षय और अहाना के लिए रही। पहले अहाना की हालत, फिर उसका दोबारा कंसीव न कर पाना, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चिंता की वजह बनी रही। उस पर जब भी बच्चे का जिक्र होता तो उनका वो जख्म ताज़ा हो जाता जिसे वक्त भी नहीं भर पाया था। इन बीते 2 सालों में पल्लवी ने एक गोल मटोल क्यूट से राजकुमार को जन्म दिया था। फलक की प्रेगनेंसी में उसके सास के अत्याचारों से बचाने के लिए उसे सहगल निवास में लाया गया था। रूपाली जी ने अपनी बेटी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं अहाना ने भी अपनी तरफ से जितना बन पड़ा था उतना किया था उसके लिए। फलक ने लड़की को जन्म दिया और इस बात पर उसकी सास ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्हें पोता चाहिए था, इसलिए फलक और उसकी नन्ही सी जान दोनों को कोस रही थी वो। यही वो वक्त था जब सुमित ने वो फैसला लिया जिसकी उम्मीद उससे किसी को नहीं थी। फलक और अपनी बेटी को लेकर वो अलग हो गया। कमाऊ बेटे बहू घर से निकले, सारा काम का बोझ सासू माँ के सर पर आ गया तो 1 महीने के अंदर वो लाइन पर आ गई। सुमित का सपोर्ट मिला और अब फलक अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही थी। सास भले ही माँ सा प्यार नहीं करती थी पर अब उसका जीना हराम भी नहीं करती थी। आखिर बुढ़ापे में बेटे बहू का ही सहारा था, उन्हें नाराज करना अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये देखने के बाद भी रूपाली जी को अब तक अक्ल नहीं आई थी। कुछ लोग होते हैं जब तक उनके खुद के सर पर लाठी नहीं पड़ती उन्हें अक्ल भी नहीं आती। बस यही हाल था उनका। बीते वक्त में जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए अक्षय और अहाना एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अहाना और अक्षय के साथ अन्वय और अंतरा का रिश्ता भी परवान चढ़ रहा था। हालांकि अब भी उनके बीच खट्टी मीठी नोकझोंक खूब होती थी, पर जहां अंतरा शुरुआती मुलाकातों में ही अन्वय के दिल में बस चुकी थी, वहीं अब अन्वय को जानने समझने के बाद अंतरा भी खुद को उसकी ओर झुकने से रोक नहीं पाई थी। प्यार हुआ था पर इजहार नहीं हुआ था, लेकिन दोनों की खूब बातचीत होती थी। रूपाली जी को अपना फैसला सुनाने के बाद अन्वय कमरे में आया और अंतरा को फोन लगा दिया। उसने अंतरा को सारी बात बताई। दूसरे तरफ मौजूद अंतरा का गुस्से से खून खौल उठा, क्रोध और रोष के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। अंतरा, शादी करोगी ना तुम मुझसे? सारी बात बताने के बाद अन्वय ने बड़ी उम्मीद से यह सवाल किया था, जिसे पूछते हुए उसके मन में एक डर भी था कि कहीं अंतरा इनकार न कर दे, क्योंकि अब तक जब जब उसने उसके आगे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था अंतरा ने हर बार उसकी मोहब्बत को ठुकराया ही था। हालांकि अन्वय जानता था कि वो ये सब उसे तड़पाने के लिए करती है और प्यार वो भी करती है, पर वो अपनी फीलिंग्स इतने अच्छे से छुपाती थी कि अन्वय श्योर नहीं हो पाया था। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अंतरा ने अन्वय की बात पूरी होते ही सपाट लहजे में इनकार कर दिया। उसका जवाब सुनकर अन्वय चौंक गया। क्यों? वजह तुम जानते हो, वही सपाट लहजा और उखड़ा अंदाज। अन्वय शायद उसके इनकार की वजह से वाकिफ था, फिर भी उसने अनजान बनते हुए सवाल किया। नहीं जानता, तुम बताओ। वजह तुम्हारी माँ है। तुम्हें भले ही बुरा लगे क्योंकि वो माँ है तुम्हारी, पर मुझे आंटी पहले दिन से सख्त नापसंद है। इतनी खड़ूस और अकड़ू है, सब पर अपना राज चलाती है। जीजी के साथ कैसा बर्ताव करती है ये मैं खुद देख कर आई हूँ। शादी के बाद उन्होंने जीजी को एक दिन भी सुकून से जीने नहीं दिया है। अब उन्हें जीजू से दूर करना चाहती है। तुम्हारी माँ बिल्कुल शकुनी और मंथरा की प्रजाति की है। ऐसी दुष्ट औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी बहू का इस कदर जीना हराम कर दे, अपने ही सगे बेटे बहू के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करे। इतनी अच्छी बहू मिलने पर भी दिन रात उनमें कीड़े निकालती रहे। जैसी तुम्हारी माँ है ना, अगर जीजी के जगह उन्हें कोई तेज तर्रार लड़की बहू के रूप में मिली होती तो उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करती और बहुत पहले अपने पति के साथ उनसे अलग होकर सुकून की जिंदगी बिता रही होती। वो तो मेरी जीजी की अच्छाई है कि वो उनके बेटे को उनसे दूर नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी माँ हर बार उनकी सहनशीलता और अच्छाई का नाजायज फायदा उठाती आई है। ऐसी चालबाज सास मिली है उन्हें कि मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है। मेरी जीजी की जिंदगी तो तबाह हो ही गई, और अगर जीजू सपोर्टिव नहीं होते तो तुम्हारी माँ उन्हें अपने पाँव की जूती बनाकर रखती या मारकर खा ही चुकी होती। सॉरी टू से, पर तुम्हारी माँ जैसी दुष्ट, क्रूर, शातिर, चालबाज औरत को झेलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जानकर खुद को सूली पर नहीं लटका सकती और ना ही अपनी जीजी के लिए परेशानियां बढ़ा सकती हूँ। अंतरा तो जैसे भरी बैठी थी, आज मौका मिलते ही वो बरस पड़ी और अपने मन की सारी भड़ास निकाल ली। हालांकि अब भी उसने कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं किए थे और ना ही अशिष्ट भाषा अपनाई थी, अपनी मर्यादा नहीं लांघी थी उसने। अन्वय ये सब शायद पहले से जानता था, इसलिए उसके चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। उसने अंतरा के चुप होते ही भौं सिकोड़ते हुए शांत लहजे में सवाल किया, मतलब तुम माँ से डर गई? लो जी, उसने छेड़ा और अपनी शान में गुस्ताखी होते देखकर अंतरा एकदम से बिदक गई और तुनकते हुए इतराज जताया, मैं डरती वरती नहीं किसी से, तो साबित करके दिखाओ, करो मुझसे शादी। अन्वय अब भी बेहद शांत था, जानता था वो अंतरा को बहुत अच्छे से, और ये भी जानता था कि उसे कैसे उकसाना है और कैसे शादी के लिए राजी करवाना है। उसकी बात अंतरा को खुली चुनौती लगी, पर जिंदगी में पहली बार वो किसी चुनौती को स्वीकारने से कतरा रही थी। पल भर के लिए वो मौन साध गई और उखड़े स्वर में बोली, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी, वो बहुत चिढ़ती है मुझसे, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपनी कहो। अन्वय ने ये बहाना भी उससे छीन लिया और परेशान अंतरा आगे कुछ कह ना सकी। अन्वय ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और संजीदगी से बोलना शुरू किया, देखो अंतरा, मैं तुम्हें और अपनी माँ दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फिर भी अगर मैंने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। तुम्हें पता है जब सारी शक्ति किसी एक पर केंद्रित हो जाए तो वो अपनी सत्ता और दबदबा बनाए रखने के लिए बाकी सबको दबा कर रखने लगता है, उनका शोषण करने लगता है, और यही माँ करती है भाभी के साथ, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता छीनने का डर है। उन्हें डर है कि भाभी के आने से उनका ये राजपाट उनसे छिन जाएगा, इसलिए वो भाभी को अपने नीचे दबा कर रखती है। भाभी बहुत भोली भाली है तो सब खामोशी से सह जाती है, जिससे माँ की हिम्मत और बढ़ जाती है। इस घर में अब तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम ही माँ को सही रास्ते पर ला सकती हो और भाभी की हिम्मत बन सकती हो। इस घर में तुम्हारी जैसी बेबाक और मजबूत किरदार वाली लड़की की ज़रूरत है, जो उनकी हर गलती पर उन्हें टोक सके, उनके तानों का मुंह तोड़ जवाब दे सके, जो उनकी तीखी जुबान को काट सके, जो उनकी हरकतों पर लगाम लगाए, उनके तानाशाह राज का खात्मा कर सके, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो।
तुम्हारे आने से भाभी को भी सहारा मिल जाएगा और तुम भी हमेशा अपनी जीजी के साथ रह सकोगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, और मुझसे शादी न करने पर नुकसान भी सबसे ज्यादा तुम्हारा ही होगा। मेरा नुकसान कैसे होगा? अंतरा अन्वय की आखिरी बात सुनकर चौंक गई और उसने तुरंत ही भौं उचकाते हुए हैरानगी से सवाल भी पूछ लिया।